थर्नथ्वेट द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। अमेरिकी जलवायु विज्ञानवेत्ता थर्नथ्वेट ने सन 1931 तथा सन 1948 ईस्वी में जलवायु के अलग अलग दो वर्गीकरण प्रस्तुत किए। जलवायु के प्रथम वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाला विश्व मानचित्र तो उपलब्ध है, किंतु द्वितीय वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का निर्माण नहीं किया जा सका। उपर्युक्त दोनों वर्गीकरण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, जैसा कि उनके निम्नांकित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। सन 1931 ईस्वी में किया गया वर्गीकरण। सैद्धांतिक रूप से यह वर्गीकरण कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के बहुत अधिक निकट है, क्योंकि इस वैज्ञानिक ने भी प्राकृतिक वनस्पति तथा जलवायु प्रदेशों में सहसंबंध प्रदर्शित किया है। इस वर्गीकरण के दो मूलभूत आधार हैं। पहला, वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। दूसरा, तापमान दक्षता, टेम्परेचर एफिशिएंसी। इन दोनों के सूचकांकों के आधार पर उपर्युक्त वैज्ञानिकों ने विश्व को कुल 5 आर्द्रता प्रदेशों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक का संबंध एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से जोड़ा गया। आर्द्रता प्रदेश, विशिष्ट वनस्पति तथा पीई सूचकांक। कैपिटल ए, अत्यधिक आर्द्र, विशिष्ट वनस्पति इसकी वर्षावन्य। पीई इंडेक्स 128 तथा इसके ऊपर। कैपिटल बी, आर्द्र, विशिष्ट वनस्पति फॉरेस्ट। पीई इंडेक्स 64 से 127 के बीच। कैपिटल सी, उप आर्द्र, विशिष्ट वनस्पति घास के मैदान। पीई सूचकांक 32 से 63। कैपिटल डी, अर्धशुष्क, विशिष्ट वनस्पति स्टेपी। पीई सूचकांक 16 से 31। ई शुष्क, विशिष्ट वनस्पति मरुस्थल। पीई सूचकांक 16 से कम। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर उपर्युक्त आर्द्रता प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। स्मॉल आर, सभी ऋतुओं में भारी वर्षा। स्मॉल एस, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अभाव। स्मॉल डब्लू, शीत ऋतु में वर्षा का अभाव। स्मॉल डी, सभी ऋतुओं में वर्षा का अभाव। पुनः तापी दक्षता, थर्मल इफिशियंसी के आधार पर विश्व को 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया गया। तापमान प्रदेश, तापीय दक्षता सूचकांक, थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स। ए डैश ट्रॉपिकल, थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स 128 तथा इसके ऊपर। बी डैश मध्य तापी, मीजोथर्मल, थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स 64 से 127 के बीच। कैपिटल सी डैश निम्न तापी, माइक्रोथर्मल। टीई इंडेक्स 32 से 63 के बीच। कैपिटल डी डैश टैगा टाइप क्लाइमेट, टीई इंडेक्स 16 से 31, कैपिटल ई डैश टुंड्रा टाइप क्लाइमेट 1 से 15, कैपिटल एफ डैश तुषार फ्रॉस्ट टीई इंडेक्स 0, वर्षण प्रभाविता वर्षा के मौसमी वितरण तथा तापीय दक्षता को मिलाने से सैद्धांतिक रूप से जलवायु के 120 प्रकार संभव है, जबकि अपने जलवायु के विश्व मानचित्र पर थॉर्नथ्वेट ने केवल 32 जलवायु खंड ही दिखाए हैं। जलवायु वर्गीकरण की समीक्षा। प्रस्तुत वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण के समान मात्रात्मक है तथा इसमें भी विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अक्षर समूहों का प्रयोग किया गया है। कोपेन की ही भांति थॉर्नथ्वेट ने भी प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का वास्तविक मापदंड माना है, किंतु यह वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण से अनेक अर्थों में भिन्न है। कोपेन के वर्गीकरण में विभिन्न जलवायु प्रदेशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए तापमान तथा वृष्टि के साधारण मूल्यों का प्रयोग किया गया है। थॉर्नथ्वेट ने अपने वर्गीकरण का आधार वर्षण प्रभाविता एवं तापी दक्षता के सूचकांकों को बनाया है, जिससे सीमा निर्धारण में कठिनाई और अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्गीकरण में विश्व मानचित्र पर जलवायु के लगभग 32 प्रमुख प्रकार दिखाए गए हैं, जो कोपेन के जलवायु प्रदेशों से लगभग 3 गुने अधिक हैं। किंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वर्गीकरण में संकेताक्षरों का कम प्रयोग किया गया है, जिससे जलवायु के प्रदेशों को याद करने में सुगमता होती है। इस वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों के नामकरण के अभाव में उन्हें केवल संकेताक्षरों से ही पहचाना जा सकता है। जलवायु के वर्गीकरण की इस प्रणाली में जलवायु संबंधी आंकड़ों की कमी से एक बहुत बड़ा व्यवधान उपस्थित हुआ। इस संदर्भ में वाष्पन दर के अभिलेखों को प्राप्त करने में कठिनाई विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि अनेक ऋतु निरीक्षण केंद्रों पर ऐसे अभिलेख नहीं प्राप्त होते। यह स्मरणीय है कि कोपेन अथवा थॉर्नथ्वेट के उपयुक्त वर्गीकरण वनस्पतियों, प्राणी विज्ञानवेत्ताओं तथा भूगोलवेत्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान की दृष्टि से यह वर्गीकरण की उपयुक्त प्रणालियां संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत मौसम के विविध तत्वों तथा जलवायु के अन्य नियंत्रकों की पारस्परिक क्रियाएं स्पष्ट नहीं होती। 1948 ईस्वी में किया गया वर्गीकरण। थॉर्नथ्वेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु का दूसरा नवीन वर्गीकरण संभाव वाष्पसर्जन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन की संकल्पना पर आधारित है। संभाव्य वाष्पसर्जन से तात्पर्य आर्द्रता की उस अधिकतम मात्रा से है जो वर्षा के उपलब्ध होने पर धरातल से होने वाले उस वाष्पन तथा वनस्पतियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में वाष्प रूप में पहुंच जाती है। प्रस्तुत वर्गीकरण में भी वर्षण प्रभाविता, तापी दक्षता तथा वर्षा के मौसमी वितरण का प्रयोग किया गया है, किंतु उनके प्रयोग का ढंग सर्वथा भिन्न था। 1931 के वर्गीकरण में प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग एक ऐसे मौसम विज्ञान संबंधी यंत्र के रूप में किया गया था जो जलवायु की विशेषताओं का मापन करने में सक्षम होता है। किंतु 1948 के वर्गीकरण में प्राकृतिक वनस्पति को एक ऐसे भौतिक प्रक्रिया के रूप में ग्रहण किया गया जिसके द्वारा धरातल से वायुमंडल में आर्द्रता का स्थानांतरण हो जाता है। वस्तुतः वनस्पतियों को वाष्पीकरण का यंत्र मान लिया गया। प्रस्तुत वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वृष्टि के समान ही जलवायु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक मानी गई है। थॉर्नथ्वेट के मतानुसार उपयुक्त वाष्पोत्सर्जन तापी दक्षता एवं आर्द्रता की हानि का एक महत्वपूर्ण अभिसूचक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी उष्ण मरुस्थल में जल की अधिक मात्रा उपलब्ध हो तो वहां अधिक वनस्पतियां उग सकती हैं तथा इसके साथ ही वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाओं से आर्द्रता की अधिक मात्रा का व्यय होगा। इस प्रकार स्पष्टतः शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा शीतल जलवायु की अपेक्षा उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक जल की आवश्यकता होती है। वृष्टि से प्राप्त होने वाली जल की मात्रा एवं उसकी अपेक्षित मात्रा की तुलना करके आर्द्रता की दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रदेश की जलवायु के वास्तविक अर्थों में आर्द्र अथवा शुष्क होने का पता लग सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत वर्गीकरण में जलवायु के विभिन्न समूहों अथवा प्रकारों की सीमाओं का निर्धारण वर्षण तथा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के अनुपात द्वारा किया गया है। इस वर्गीकरण में प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी तथा भूमि उपयोग आदि भौगोलिक कारकों की उपेक्षा की गई तथा केवल जलवायु संबंधी आंकड़ों को ही विभिन्न जलवायु प्रदेशों के विभाजन के लिए पर्याप्त समझा गया। संपूर्ण विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने के लिए संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के आंकड़ों को उपलब्ध करने में जो कठिनाई उपस्थित हुई उसको दूर करने के लिए थॉर्नथ्वेट ने एक अत्यधिक जटिल एवं अनुभाविक सूत्र निकाला जिसमें तापमान तथा सूर्य प्रकाश की अवधि को चर वेरिएबल्स माना गया। पुनः किसी स्थान में होने वाली वृष्टि की कुल मात्रा तथा वहां के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के आधार पर जलवायु के प्रकार को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित चार अभिलक्षणों का चयन किया। पहला, आर्द्रता की पर्याप्तता, मॉइस्चर एडिक्वेंसी। दूसरा, तापीय दक्षता, थर्मल एफिशिएंसी। तीसरा, आर्द्रता की पर्याप्तता का मौसमी वितरण, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर एडिक्वेसी। चौथा, तापीय दक्षता का ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण, समर कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। उपर्युक्त में से प्रत्येक को एक विशेष सूचकांक से दर्शाया जाता है। इन्हीं मानों को आधार मानकर विभिन्न जलवायु प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण मात्रात्मक ढंग से किया जाता है। सन 1948 के वर्गीकरण में आर्द्रता सूचकांक, तापीय दक्षता तथा उसका ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण और आर्द्रता की पर्याप्तता का मौसमी संकेंद्रण, इन सभी की गणना विभिन्न सूत्रों के आधार पर की जाती है जो बड़ा दुष्कर कार्य है। आर्द्रता सूचकांक के आधार पर जलवायु को निम्नांकित 9 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। जलवायु आर्द्रता के प्रकार तथा आर्द्रता सूचकांक। कैपिटल ए अति आद्र, आर्द्रता सूचकांक 100 तथा उससे अधिक। कैपिटल बी 4 आद्र, आर्द्रता सूचकांक 80 से 100 के बीच। कैपिटल बी 3 आद्र, 60 से 80। कैपिटल बी 2 आद्र, 40 से 60। कैपिटल बी 1 आद्र, 20 से 40। सी 2 नम उपाद्र, 0 से 20। सी 1 कैपिटल सी 1 शुष्क उपाद्र, -33.3 से 0 तक। कैपिटल डी अर्ध शुष्क, -66.7 से -33.3। कैपिटल ई शुष्क, -100 से -66.7। पुनः तापी दक्षता तथा उसके ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण प्रतीक के आधार पर जलवायु के 9 प्रकार का विभाजन किया गया, जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है। तालिका, तापी दक्षता, ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण। तापी दक्षता के अंतर्गत जलवायु के प्रकार, सूचकांक सेंटीमीटर में, प्रकार संकेंद्रण प्रतिशत। कैपिटल ए डैश मेगाथर्मल, सूचकांक 114 तथा उससे अधिक। प्रकार स्मॉल ए, संकेंद्रण प्रतिशत 48.0 से कम। कैपिटल बी डैश मध्यतापी, सूचकांक 99.7 से 114। प्रकार स्मॉल बी डैश, संकेंद्रण प्रतिशत 48 से 51.9। कैपिटल बी डैश 3 मध्यतापी, सूचकांक 85.5 से 99.7। प्रकार बी डैश 4, बी डैश 3, स्मॉल बी डैश 3, संकेंद्रण प्रतिशत 51.9 से 56.3। कैपिटल बी डैश 2 मध्यतापी, सूचकांक 71.2 से 85.5। प्रकार स्मॉल बी डैश 2, संकेंद्रण प्रतिशत 56.3 से 61.6। कैपिटल बी डैश 1 मध्यतापी, 57.0 से 71.2। प्रकार स्मॉल बी डैश 1, संकेंद्रण प्रतिशत 66.6 से 68.0। कैपिटल सी डैश 2 निम्न तापी, सूचकांक 42.7 से 57.0 तक। प्रकार स्मॉल सी डैश 2, 68.0 से 76.3। कैपिटल सी डैश 1 निम्न तापी, सूचकांक 28.5 से 42.7। प्रकार स्मॉल सी डैश 1, कैपिटल डी डैश टुंड्रा टाइप प्रदेश, सूचकांक 14.2 से 28.5, प्रकार स्मॉल डी डैश, संकेंद्रण प्रतिशत 88.0 से अधिक, कैपिटल ई डैश हिम, संकेंद्रण सूचकांक 14.2 से कम। आर्द्रता की मौसमी पर्याप्तता के आधार पर जलवायु के अन्य गौण विभाग किए गए हैं जो निम्नांकित सारणी से स्पष्ट हो जाता है। आर्द्र जलवायु, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी टू। शुष्कता सूचकांक स्मॉल आर, जल का कोई अभाव नहीं। शुष्कता सूचकांक 0 से 10 के बीच। स्मॉल एस, ग्रीष्मकालीन साधारण अभाव। शुष्कता सूचकांक 10 से 20। स्मॉल डब्लू, शीतकालीन साधारण अभाव। शुष्कता सूचकांक 10 से 20। स्मॉल एस टू, ग्रीष्मकालीन अधिक कमी। 20 से शुष्कता सूचकांक 20 से ऊपर। स्मॉल डब्लू टू, शीतकालीन अधिक कमी। शुष्कता सूचकांक 20 से ऊपर। शुष्क जलवायु, कैपिटल सी वन कैपिटल डी कैपिटल ई। आर्द्रता सूचकांक स्मॉल डी, जल की बचत नगण्य। आर्द्रता सूचकांक 0 से 16.7। स्मॉल एस, शीतकालीन बचत साधारण। आर्द्रता सूचकांक 16.7 से 33.3 तक। स्मॉल एस टू, शीतकालीन बचत बड़ी मात्रा में। आर्द्रता सूचकांक 33.3 से ऊपर। स्मॉल डब्लू टू, ग्रीष्मकालीन बचत बड़ी मात्रा में। आर्द्रता सूचकांक 33.3 से ऊपर। जलवायु के उपर्युक्त चार घटकों अर्थात आर्द्रता पर्याप्तता, आर्द्रता की पर्याप्तता का मौसमी वितरण, तापीय दक्षता एवं तापीय दक्षता का ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण के सम्मिलित आधार पर किसी स्थान की जलवायु के प्रकारों को निर्धारित किया जा सकता है तथा उसे चार अक्षरों के समूह से प्रदर्शित भी किया जा सकता है। प्रस्तुत वर्गीकरण के विवेचन से इसकी जटिलता का हमें बोध हो जाता है। यही कारण है कि जलवायु के विभिन्न प्रकारों को, जो संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं, विश्व मानचित्र पर नहीं दिखाई जा सका है।